नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानु शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर सऊदी अरब की दो दिन की यात्रा पर रियाद पहुंचे। भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेंगे। भारत ने चार अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मालवी और चांद के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्यसभा और राजनीति से त्याग पत्र देने का निर्णय लिया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज बहुत तेज वर्षा की गंभीर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में भाग लेने के लिए आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंच गए हैं। दो दिन की इस यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर परिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारी के रूप में उभरा है, जहां लगभग 90 लाख भारतीय रहते हैं। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर मंगलवार को दो दिन की यात्रा पर जर्मनी की राजधानी बर्लिन जाएंगे। यह बर्लिन की उनकी तीसरी यात्रा होगी। डॉ जयशंकर जर्मनी के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री इस महीने की 12 तारीख से स्विट्जरलैंड में जिनेवा जाएंगे। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री उन संगठनों के प्रमुखों और प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे जिनके साथ भारत सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। डॉ जयशंकर स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने अफ्रीका के चार देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी और चाद के लोगों की अनाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि मलावी के लिए 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप कल रवाना हुई। जिम्बाब्वे के लिए 1000 मैट्रिक टन चावल की खेप कल नवासेवा बंदरगाह से रवाना की गई। जिनेवा को 1300 मैट्रिक टन मक्का भेजा गया। भारत ने चांद में हुए भीषण अग्निकांड के बाद लगभग 2300 किलोग्राम जीवन रक्षक दवाएं और चिकित्सा सामग्री कल दिल्ली से रवाना की। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जियाद अल नहयान आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। यह यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारी का एक प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। श्री खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मिलोनी ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष के समाधान में भारत और चीन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा था कि मौजूदा संकट के समाधान में भारत प्रमुख भूमिका निभा सकता है। सुश्री मिलोनी ने यह बयान इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद आया है। तृणमूल कांग्रेस सांसद जवाहर सरकार ने राज्यसभा और राजनीति से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में उन्होंने पार्टी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। श्री सरकार ने संसद की सेवा का अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया है। श्री सरकार ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार और पार्टी नेताओं की दंगाई पर निराशा व्यक्त किया है। उन्होंने आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म और हत्या मामले के बारे में कहा है कि जनता का आक्रोश स्वाभाविक और गैर राजनीतिक है। श्री सरकार ने कहा कि वे पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं। श्री सरकार ने कहा कि राज्य सरकार दोषियों को सजा दिलाने के लिए पर्याप्त और त्वरित कदम उठाने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए गतिविधियां तेज हो गई है। पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पलोरा में एक रैली को संबोधित किया। श्री शाह ने विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सरकार की वचनबद्धता दोहराई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर और जी किशन रेड्डी चुनावी अभियान में भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान 25 सितंबर को होगा। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के कांग्रेस पार्टी के दबावों की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जब तक भाजपा सत्ता में है, अनुच्छेद 370 बहाल नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने पार्टी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। श्री सिंह ने रामबन जिले में गर्मजोशी से स्वागत के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए 10 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। आरएस पठानिया उधमपुर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। गुलाम मोहम्मद मीर हंदवाड़ा से और नसीर अहमद लोन बांदीपोरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ में कल गिरी इमारत के मलबे में दबे लोगों की मरने वालों की संख्या 8 हो गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बचाव कर्मियों ने मलबे से 3 और शव निकाले हैं। पुलिस ने बताया कि इमारत को करीब 4 साल पहले बनाया गया था। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को राहत प्रयासों में तेजी लाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इसका आयोजन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस वर्ष का विषय है बहुभाषी शिक्षा संवर्धन, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़ी परिवर्तनकारी कदम है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह युवाओं को अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का पूरा उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है। नई दिल्ली में आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भाषाओं की समृद्धि के मामले में भारत एक अनूठा देश है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा के महत्व पर बल दिया गया है। श्री धनखड़ ने सभी से कम एक व्यक्ति को साक्षर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि किसी को साक्षर बनाना मानवता की सेवा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश को अब आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। श्री धनखड़ ने कहा कि सड़क संपर्क, स्कूल, बिजली, शौचालय और इंटरनेट सेवा के गांव तक पहुंचने से देश सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती विक्षोभ के कारण आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन जिलों में निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश की संभावना के साथ चक्रवात की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार चक्रवात के उत्तर ओडिशा, पश्चिम बंगाल तटीय तटों की और बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक गहरे दबाव में बदलने की संभावना है। कल शाम इसके पूरी और दीघा के बीच ओडिशा और आसपास के पश्चिम बंगाल तटों पर को पार करने की संभावना है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।